पंचाध्यायी लेक्चर नंबर 3।
ओम नमः सिद्धे
सल्लक्षणिकं सन्मात्रं वा यतः स्वतः सिद्धं तस्मादनादिनिधनं स्वसहायं निर्विकल्पं च।
यह ग्रंथग्रास श्री पंचाध्यायी है और उसके अभी हम पृष्ठ संख्या 3 पर आ गए हैं। पहला अवांतर अधिकार शुरू हुआ है और इसमें द्रव्य का निरूपण कर रहे हैं। उसके लिए द्रव्य का लक्षण सबसे पहले बताते हैं कि लक्षण क्या है, कि सत यही उसका लक्षण है, विद्यमानता, क्योंकि वो अनादि से है अनंत काल तक रहता है। इसलिए सत सत्तापना ये द्रव्य का लक्षण कहा, सत द्रव्य लक्षण कहाँ सुना है?
तत्वार्थ।
तो कहते हैं कि वो स्वतः सिद्ध है, इसलिए कैसा है? तो अनादि निधन है, स्व सहाय है, क्योंकि द्रव्य तो है और है। पर्याय में हम कहते हैं कि दूसरा कोई मददगार है कि नहीं, ये सवाल कहाँ हो सकता है? पर्याय में वो भी अपने ही स्वयं से होती है, द्रव्य से स्वयं से होती है। वो जब पर्याय की बात आएगी तब उसको हम देखेंगे, पर वहां निमित्त कारण की बात जब आती है, निमित्त निमित्त रूप से भी जो है वो पर्याय में लगता है। यहाँ तो द्रव्य की बात चल रही है, यहाँ निमित्त का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ नई बात नहीं बनी है, वो तो है अनादि से। तो कौन सा द्रव्य अनादि से है अमूल? 6 द्रव्यों में से सभी। ये प्रत्येक द्रव्य का लक्षण बताया। तो इसके लिए हमने द्रव्य के 14 अलग अलग नाम देखे थे, द्रव्य के नाम सहित 14 हमने देखे थे। अरविंद भाई को याद हो गया कि नहीं?
याद तो
ये सबने हमको सीना सुनाया, अमोल ने सुनाया, शशांक भाई ने सुनाया, लक्ष्मी आपने भी सुनाया है ना, प्रेरणा भी ने सुनाया ना,
द्रव्य
तत्व
सत्व सत्ता सत अन्वय वस्तु अर्थ पदार्थ सामान्य धर्मी देश समुदाय।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 14 के 14 नाम बराबर आपने बता दिए और उसी क्रम से भी बता दिए, बहुत अच्छी बात है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने देखा है कि अनेक नामों से द्रव्य को पुकारा जाता है। तो जब ग्रंथ रचना करते हैं तो कहीं किसी नाम का उल्लेख होगा, कहीं किसी नाम का। ये द्रव्य के अर्थ में इतने शब्द आ सकते हैं, एकार्थवाची जिसको कहेंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम, सामान्य विशेषात्मक वस्तु को, यानी वस्तु यानी द्रव्य कैसा है तो सामान्य विशेषात्मक है, तो उसको भेद की दृष्टि से देखना, कथन करना, वो विशेष कथन है, अर्थात धर्मों का कथन है। यानी प्रत्येक वस्तु कैसी है तो सामान्य विशेषात्मक है। विशेषात्मक क्यों? क्योंकि उसके जो कुछ कैरेक्टर्स हम कहेंगे, उसके गुण है, वो वस्तु कैसी है। पहले में तो सभी द्रव्यों का सामान्य से लक्षण बता दिया, परंतु ये जीव द्रव्य और ये पुद्गल द्रव्य हम कैसे पहचानते हैं? तो उनके विशेषताओं के कारण पहचान सकते हैं। तो कहते हैं सामान्य विशेषात्मक वस्तु को भेद की दृष्टि से देखना, कथन करना, ये विशेष कथन है, यानी धर्मों का कथन है। और उसी को नहीं, उसी वस्तु को, एक ही वस्तु को दो प्रकार से कथन कर सकते हैं, भेद की दृष्टि से भी कथन कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, और अभेद की दृष्टि से, अखंड की, सत की अपेक्षा से भी उसका निरूपण करते हैं तो उसको कहेंगे धर्मी का कथन। पहला किसका था? धर्म का कथन, और ये धर्मी का कथन। यहाँ मात्र सामान्य अंश नहीं है किंतु सामान्य विशेषात्मक अभेद सामान्य है। ये अभेद सामान्य बताया यहाँ, मात्र सामान्य वाला अंश नहीं है। अभेद सामान्य ने ये तो सभी सामान्य से ये द्रव्य है, इसी यहाँ चर्चा चल रही। जो अनुभय नये निश्चय नये अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक नये से कहा जाता है, इसी नये से यह लक्षण किया है। प्रमाण दृष्टि का लक्षण यह नहीं है। अब ये नयों की चर्चा तो बाद में जब उसकी चर्चा आएगी तब उसके विस्तार में हम चले जाएंगे। देखो प्रमाण दृष्टि का लक्षण क्या है? प्रमाण से वस्तु भेदा भेदात्मक होती है, यानी भेद का भी जो सामान्य है उसी को विशेष की अपेक्षा, दोनों का एट ए टाइम युग पर ग्रहण करना, उसको हम कहेंगे प्रमाण। अभी तो इतनी बात करेंगे, आगे तीन नंबर को देखेंगे। श्लोक में जो निर्विकल्प शब्द आया था, निर्विकल्प शब्द का अर्थ राग रहित नहीं है किंतु भेद रहित अखंड है। विकल्प का एक अर्थ होता है राग, और विकल्प का दूसरा एक अर्थ है उसी शब्द का भेद। निर निर यानी रहित, जैसे हमने मल और निर्मल, जहां मल नहीं है मल रहित हो जाता है उसको निर्मल कहते हैं, निर शब्द लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर निर्विकल्प, विकल्प से रहित, तो विकल्प से रहित जो द्रव्य कहेंगे तो पुद्गल भी विकल्प रहित है, तो यहाँ तो राग वाला विकल्प उसका तो अर्थ यहाँ नहीं लेना है, तो भेद रहित की बात यहाँ कर रहे हैं। तो निर्विकल्प शब्द का अर्थ राग रहित ऐसा अर्थ यहाँ नहीं लेना है, तो यहाँ कौन सा अर्थ लेना है? भेद रहित अखंड, यानी वस्तु कैसी है? छह द्रव्य तो अखंड है, क्योंकि छह द्रव्यों का सामान्य कथन है। यहाँ सामान्य वस्तु का लक्षण है, आत्मा की बात नहीं है। ऊपर के भी पैराग्राफ में बताया है सामान्य विशेषात्मक जो वस्तु है उसमें से जो सामान्य वो अलग बात है, और यहाँ वस्तु का सामान्य लक्षण बता रहे ये अलग बात है। डिफरेंस क्या है? देखो जीव सामान्य विशेषात्मक है, तो भेद को छोड़कर अकेले सामान्य का कथन जो हम समय सार में आगे देखते हैं उसका लक्षण अलग है। और यहाँ सामान्य शब्द से क्या लेना है? सभी द्रव्य सामान्य से कैसे सख्त है उसकी बात यहाँ चल रही है, यानी इस द्रव्य में जो सामान्य वाला अंश है उस अंश की बात नहीं चल रही है। सभी द्रव्य सामान्य से कैसे है तो उसको कहीं ये द्रव्य का लक्षण है, उस सामान्य की यहाँ चर्चा चल रही है, यही बात है ना? तो यहाँ निर्विकल्प कहने से द्रव्य प्रत्येक द्रव्य अखंड है, भेद रहित है, उसकी चर्चा चल रही है। यहाँ सामान्य वस्तु का लक्षण है, आत्मा की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा में हम निर्विकल्प अवस्था ऐसी बात करेंगे, यहाँ वो बात नहीं हो रही। स्वतः सिद्ध शब्द से यह प्रयोजन है कि वस्तु किसी ईश्वर आदि से उत्पन्न नहीं है, स्वतः स्वभाव से स्वयं सिद्ध है। स्वयं भू भी नहीं कहा, ईश्वर ने तो नहीं निर्माण किया, तो ये क्या वो स्व से निर्मित है? तो कहते ऐसा भी नहीं, निर्मित है कहेंगे तो कहीं ना कहीं उत्पत्ति हुई ये कहना पड़ेगा, वो तो है ही है, इसलिए स्वतः सिद्ध शब्द आया। वो स्वयं सिद्ध कहो या स्वतः सिद्ध कहो बात एक ही। अनादि निधन शब्द से यह अभिप्राय है कि वस्तु क्षणिक नहीं है। देखो ऐसे मानने वाले भी है ना कि वस्तु क्षणिक होती है, बौद्ध मत है ऐसा, तो कहते अनादि निधन कहने से उसका निषेध हो जाता है, और प्रत्येक द्रव्य अनादि निधन है। क्यों? तो सत की उत्पत्ति नहीं है, सत कहने से वो अस्तित्व वाली वस्तु है, तो उसका कभी उत्पाद नहीं हो सकता ना कभी नाश हो सकता, तो सत की उत्पत्ति नहीं है और न सत का नाश है, वह अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। स्वसहाय का यह भाव है कि पदार्थ पदार्थांतर के संबंध से पदार्थ नहीं है, यानी मान लेते कोई नाम एक ए नाम का एक पदार्थ है, बी नाम का एक पदार्थ है, तो वो बी के संबंध के कारण ए पदार्थ टिका हुआ है ना, प्रतिदिन नहीं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, सेल्फ सफिशियंट है, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं से अनादि से अनंत काल तक रहता है, या निमित्त या अन्य पदार्थ से नहीं टिकता। वो है भी अपने कारण, उसकी सत्ता भी है, और वो सत्ता जो टिकी है, बनी हुई है, तो उसका संभाल करने वाला ऐसा कोई ईश्वर है क्या इस विश्व में? अन्यमती मानते हैं ना, कोई उत्पन्न करने वाला, कोई एक ईश्वर को कार्य सौंप दिया, किसी ईश्वर को उसको बनाए रखने का कार्य सौंपा, और किसी ईश्वर को वो नाश करने का काम सौंप दिया। ऐसा कोई ब्रह्मा विष्णु महेश है ही नहीं है। पदार्थ और अन्य पदार्थ, हाँ, जो पदार्थ है अन्य पदार्थ के कारण या उसके संबंध से ये टिका हुआ है, बना हुआ है, ये बात नहीं हो सकती।
हम जो देखते हैं ना, ये जो स्टैंड है, थोड़ी जिसको बोलते हैं, उसके आधार से पुस्तक है ना, तो कहते हैं नहीं, प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक पदार्थ में अपने अपने से टिका हुआ, अन्य पदार्थ के कारण से टिका हुआ नहीं। आगे देखिए,
किंतु देखो ना, किसी अन्य पदार्थ से नहीं टिकता, किंतु वह प्रभु खुद मुख्तार है। मुख्तार का अर्थ क्या? इंडिपेंडेंट है, यानी इंडिपेंडेंट कहो या स्वतंत्र है कहो या सेल्फ सफिशिएंट है कहो, ये प्रभु किसको? वो मुख्तार है, हाँ वही है। वो मुख्तार वकील के लिए भी कहते हैं, मुख्तार वकील ही कहते हैं। ये प्रभु कौन से द्रव्य के लिए कहा? प्रभु खुद मुख्तार है लिखा, हर एक द्रव्य के लिए। वो जड़ भी अपना जड़ेश्वर है, हर एक में है अपने अनादि अनंत, अपने स्वभाव या विभाव रूप से स्वयं अपनी योग्यता से परिणमन करता है। ये स्वभाव रूप तो सभी तो द्रव्य करते ही करते हैं, पर जीव और पुद्गल विभाव रूप भी परिणमन करते हैं, तो विभाव रूप करते तो किसी दूसरे के कारण करते होगे ना। हम गुस्सा करते हैं, बच्चे हमारे नहीं सुनते तो करते हैं, तो बच्चे के कारण हमने गुस्सा किया कि नहीं अश्विन भाई, नहीं किया? अच्छा, तो क्यों किया?
अपने कारण,
कमजोरी के कारण। तो स्वभाव हो या विभाव है, अपनी योग्यता से परिणमन करता है उस समय, उस जीव के या उस जो कुछ द्रव्य की जो अपनी योग्यता है, उस पर्याय रूप से परिणमने की योग्यता। और वो जो योग्यता रूप जो धर्म है ना, वो अनादि अनंत प्रत्येक समय का जो कुछ निश्चित योग्यता उस द्रव्य में पड़ी हुई है। द्रव्य ही अपने निश्चित समय में निश्चित पर्याय रूप परिणमित करेगा ही करेगा, क्योंकि अपनी स्वयं की योग्यता से परिणमन करता है। कभी किसी पदार्थ का अंश न स्वयं अपने में लेता है, न अपना कोई अंश दूसरे को देता है। कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य का अंश अपने में नहीं लेता और अपना दूसरे में नहीं देता। तो हमारा ये शरीर हमारे साथ 65 साल से है, थोड़ा अपना ज्ञान का अंश उसमें चला जावे और शरीर का थोड़ा गोरापन बुरापन अपने में आ जाए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? मराठी में तो कहते हम ढवळ्या शेजारी बांधला पावळा, सुना कि नहीं? वहां नहीं पण गुण लागला, गुण है ना, वहां तो कोई एक दूसरे का देखा देखी सीख लेते हैं ना, उसके लिए बताया अवगुण। यहाँ तो हाँ, उसका मीनिंग ऐसा है, बैल के दो कलर, ढवळ्या ने सफेद, पावळ्या ने वो तो हाँ वो तो कलर जैसा, तो दोनों एक साथ बांधे हैं, तो दोनों एक साथ बांधते हैं उसको, जोते बैलगाड़ी के साथ जोते हैं, तो एक कुछ नखरे करते हैं तो दूसरा भी सीख जाता है, परंतु उसका वर्ण है ना, वर्ण एक तो दूसरे को नहीं लगता है।
गुजराती में है, अच्छा,
बुद्धि, हाँ अच्छा,
कहते हैं
कलर, हाँ वो तो वही अनादि निधन में उसे उत्पत्ति नाश से रहित बताना है और स्वसहाय में उसकी स्वतंत्र स्थिति टिकाव तथा स्वतंत्र परिणमन बताना है। यहाँ स्वसहाय में उसके तो वो तो स्वयं से है ही है सेल्फ सफिशिएंट, उसका जो परिणमन होता है उसमें भी अन्य किसी सहाय की जरूरत नहीं है, ये बात बताना चाहिए। यानी वो टिका भी अपने के अपने स्वयं के कारण और वो परिणमन भी करता है अपने कारण, किसी निमित्त के कारण इसने परिणमन किया ऐसी बात नहीं हो सकती। यह गाथा इस प्रथम भाग का करण सूत्र है। सारा ग्रंथ अर्थात 768 श्लोक इसी वस्तु को अनेक पद्धतियों से समझाने का प्रयत्न किया है। इसी वस्तु को यह सूत्र कंठस्थ करने योग्य है। हम रोज इसी को अभी मंगलाचरण रूप से कहेंगे। वस्तु लक्षण या वस्तु विचार के लिए अत्यंत लाभदायक है। जब वस्तु विचार करना, तत्व का विचार करना, तो यही तो उसमें विचारों में अलग अलग पद्धति से उसके विचार आ जाएंगे, परंतु उसका बेस ही नहीं मालूम होगा तो क्या विचार करेंगे उस पर। तो वस्तु का विचार करना है ने क्या करना, लोगों को प्रश्न पड़ता है। तो जो हमने स्वाध्याय में सीखा है उसी के बारे में मन में जो गोलन चिंतन मनन चलता है उसी को कहेंगे वस्तु विचार। अब अगली भूमिका, यानी ये 8वां श्लोक हुआ, आने वाले श्लोकों की भूमिका यानी उसके इंट्रोडक्शन जैसे, उसमें कौन सा विषय आने वाला है उसको यहाँ बताएंगे। वस्तु का जो स्वरूप यहाँ अस्थि रूप से अन्वय रूप से कहा है, उसी की नासी रूप से ने व्यतिरेक रूप से अगले श्लोक 9-14 तक चर्चा की है। क्या कहना चाहते हैं? अस्थि रूपे ने पॉजिटिव वो तो कैसा है वो बताया, अन्वय रूपे ने वो तो जो अन्वय क्या करते थे कंटिन्यूटी जो है वही का वही का वही का वही जो रहा है, और व्यतिरेक ने वो नहीं दूसरा उसको भी व्यतिरेक कहते हैं। व्यतिरेक शब्द दो में आते हैं, वो व्याप्ति के लिए भी शब्द आता है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो 9-14 में उसी की चर्चा होगी। अस्थि नास्ति से वस्तु के स्वरूप की ठीक सिद्धि हो जाती है। अस्थि नास्ति से है भी और नहीं है वो कैसे, तो स्वयं से है पर से नहीं है, ये अस्थि और नास्ति। जब हम कहेंगे ये नीला है, ये कलर पेन का नीला है कहेंगे, तो ये नीला है जब कह रहे हैं तो ये सफेद नहीं है, पीला नहीं है, लाल नहीं है, काला नहीं है, हरा नहीं, ये सब उसके अंदर आ गए। हम जानते हैं जब किसी को ये इस रूप से है तो उसी समय ज्ञान में यह है कि पर रूप से नहीं। जब कोई पेन होता है ना, दर्द होता है, एक उपाय बताती हूँ। जैसे घुटने में दर्द हो रहा है बहुत, लेफ्ट साइड में मेरे, तो क्या विचार करना, राइट घुटने में नहीं है दर्द, अंगूठे में नहीं है, अभी एक एक पार्ट का नाम ले लो शरीर का और वहां दर्द है कि नहीं देखो जरा, तो उधर का ध्यान तो हट जाएगा।
मेरे इनके सर में दर्द होता है तो शरीर नहीं बोले।
हाँ देखो देखो, हाँ वही का वही अन्वय का अर्थ होता है। अन्वय ने द्रव्य के लिए अन्वय कहते हैं ना, एक शब्द
अन्वय
ये नहीं, वो जो चेंज हो जाता है उसको व्यतिरिक, ये अन्वय व्यतिरिक की भी सिद्धि आएगी इसके अंदर। अस्थि नास्थि से वस्तु के स्वरूप की ठीक सिद्धि हो जाती है और खोटी मान्यताओं का स्वतः खंडन हो जाता है। या यूं भी कह सकते हैं कि इस श्लोक में जैन सिद्धांत पद्धति अनुसार कथन किया है और उसी वस्तु का अगले 6 श्लोकों में यानी 9-14 तक के श्लोकों में अन्य मान्यताओं की मुख्यता को लेकर उनका न्याय पद्धति अनुसार खंडन किया है। न्यायपति ने अपने मत का जो मंडन कथन करेंगे उसी के द्वारा अन्य मतियों का निराकरण खंडन हो जाता। अभेद दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से द्रव्य का लक्षण यहाँ किया है। 70वें श्लोक तक इसकी सिद्धि करके फिर इसी द्रव्य को 71 से भेद दृष्टि यानी व्यवहार दृष्टि से निरूपण करेंगे। भेद दृष्टि के बाद एक कॉमा डैश लगाना, भेद दृष्टि कहो या व्यवहार दृष्टि कहो एक ही बात है। अब आते हैं 4 नंबर के प्रश्न। खोटी मान्यताओं का खंडन 9 से 14 तक 9 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे।
इत्थम नो चेदसत प्रादुर्भूतिर्निरंकुशा भवति परतः प्रादुर्भावो युद्धसिद्धत्वं सतो विनाशो वा।
यदि ऊपर कही हुई रीति से वस्तु का स्वरूप न माना जाए, ऊपर कई रीति से बताया था नितिन भाई, वो अनादि निधन है, वो अभी हमने जो पढ़े ना स्वसहाय निर्विकल्प, ये जो ऊपर बताया है यदि उसको न माना जाए अर्थात वस्तु पूर्वोक्त अनुसार, पूर्वोक्त ने पहले बताए अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू पहले जो स्टेटमेंट किया उसके अनुसार स्वतः सिद्ध न मानी जाए, वहां तो जो है असलियत रियलिटी वो बताई है परंतु तो कोई उसको नहीं मानेगा तो क्या आपत्ति आती है उसकी बात करेंगे। तो असत पदार्थ की उत्पत्ति निरंकुश होगी यानी वस्तु जो छह द्रव्य वो है स्वतः सिद्ध है ऐसा अगर नहीं मानेंगे तो कोई भी नई वस्तु उत्पत्ति उसकी होती रहेगी, द्रव्य नया तैयार होता रहेगा। तो कहते असत जो नहीं है, हमने क्या कहा सभी पदार्थ सत है अस्थि स्वरूप है, अगर उसको नहीं मानेंगे स्वतः सिद्ध है तो जो पदार्थ नहीं है ना असत उसको उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। तो कहते उसकी उत्पत्ति निरंकुश, उसपे कोई कंट्रोल अंकुश नहीं, अंकुश समझते किसको कहते
अंकुश,
वो माहू जो हाथी उसको कंट्रोल करने के लिए जो उसके पास एक साधन होता है ना वैसे चुभाता है वो कान के ऊपर, तो अंकुश कहते हैं उसको। तो निरंकुश यानी बिना अंकुश वाला, तो असत पदार्थों की उत्पत्ति होती रहेगी बिना रोक टोक की, असत पदार्थ भी होने लगेगा।
हाँ ऊपर अनादि निधन देखा, प्रत्येक वस्तु अनादि से है अनंत काल से टिकने वाली है, तो नहीं बनी तो वस्तु नहीं गई, जो असत है जो नहीं है उसकी उत्पत्ति होगी तो उसकी आदि चालू होगी।
हाँ वो आदि और अंत सहित मानना पड़ेगा, स्वसहाय के बदले ऊपर सहाय माननी पड़ेगी, बहुत सारी आपत्ति आ जाएगी।
तो ऊपर जो छह घटित
इसी प्रकार ये तो वहाँ से स्वतः सिद्ध नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तो नए नए पदार्थ उत्पन्न होते रहेंगे या जो पुराने नाश भी होते रहेंगे। अब कहेंगे इसी प्रकार वस्तु की पर से उत्पत्ति होने लगेगी, अर्थात एक पदार्थ की उत्पत्ति दूसरे ईश्वरादि पदार्थ से होगी। ईश्वर नाम का भी एक पदार्थ है ना द्रव्य, तो मानते हैं वो जो मानने वाले हैं कि ईश्वर ने इसको उत्पन्न किया है, तो एक पदार्थ की उत्पत्ति दूसरे पदार्थ से होने लगेगी अथवा युत सिद्ध होगा। युत सिद्ध का अर्थ है किसी चीजों के मिलने से उसकी उत्पत्ति हो जाती है, द्रव्य गुण के संयोग से पदार्थ कहलाएगा अर्थात अथवा सत का विनाश होगा। इन्हें ऐसे मानने वाले हैं ये ज्ञान गुण अलग है और जीव द्रव्य अलग है, दोनों का वो तो मिलन हो जाता है, वो जीव जान में लगता है। देखो भावार्थ पढ़ेंगे। हाँ
ब्रैकेट है
था वो हमने डाला था, मैं कहना भूल गई। यानी युक्त सिद्ध होगा के बाद ब्रैकेट शुरू हो जाता है, पहले ब्रैकेट करके फिर पढ़ना द्रव्य गुण के संयोग से पदार्थ कहलाएगा। स्वतः सिद्ध नहीं मानकर युत सिद्ध मानना कोई मानेंगे, संयोग से बना। भावार्थ पढ़ेंगे इसका, यदि वस्तु स्वतः सिद्ध नहीं मानते हो तो असत्य उत्पन्न मानो, यानी स्वतः सिद्ध नहीं मानने से असत की भी उत्पत्ति माननी पड़ेगी। अनादि निधन नहीं मानते हो तो परतः सिद्ध मानो, यानी दूसरे से वो बनी है ऐसा मानो, किसी ईश्वर ने उत्पन्न किया ऐसा मानो, क्योंकि अनादि निधन नहीं है वो, किसी से उसकी उत्पत्ति हुई बीच में ही, पहले से है ही नहीं ऐसा मानना पड़ेगा। स्व सहाय नहीं मानते हो तो सत का नाश मानो, निर्विकल्प यानी अखंड नहीं मानते हो तो युत सिद्धता यानी दो पदार्थों के संयोग से एक पदार्थ मानो। अर्थात यदि वस्तु स्वतः सिद्ध नहीं मानते हो तो इनमें से किसी रूप में तो माननी पड़ेगी, क्योंकि वस्तु तो है तो वो किसी न किसी रूप में उसको मानना पड़ेगा। अब ये जो उन्होंने जो ऐसा यदि नहीं मानते तो ये प्रसंग आएगा, ये जो बात बता रहे हैं तो ये मानने में क्या आपत्ति होगी उसको समझाएंगे। यहाँ लिखा ना कि सत्य सिद्ध नहीं मानते तो असत की उत्पत्ति माने, तो असत की उत्पत्ति मानने में क्या दोष है ये बताएंगे। इसके लिए 10 नंबर पढ़ेंगे, सेकंड लाइन में करेक्शन बता रही हूँ। को वार ये तुम, ये तुम के ऊपर जो चांद बनाया है संस्कृत में ऐसा नहीं होता, वो रेगुलर बिंदी देना। और कुंभोत्पत्तिम चाहिए, डबल भ हुआ है उसके लिए म और भ चाहिए, आधा म और भ तो है वहां पर, कुंभो शब्द है वो, कुंभोत्पत्तिम। अब पढ़ेंगे हम श्लोक को। असतः प्रादुर्भावे द्रव्याणामिह भवेदनन्तत्वम् को वारयितुं शक्तः कुम्भोत्पत्तिं मृदाद्यभावेऽपि। असत की उत्पत्ति होने पर असतः प्रादुर्भावे, प्रादुर्भाव रहे उत्पत्ति होना, यानी असत की अगर हम उत्पत्ति मानते हैं इस लोक में द्रव्य यानी जातियों के अनंतपना होगा, यानी अनंत प्रकार के द्रव्य हो जाएंगे, मिट्टी आदि के अभाव में भी घड़े की उत्पत्ति को रोकने के लिए कौन समर्थ होगा, कोई नहीं। ऊपर लिखा ना मृदादि अभावे अपि कुंभोत्पत्तिम वारयितुं को शक्तः, यानी मिट्टी के अभाव में भी घड़े की उत्पत्ति होती रहेगी, क्योंकि असत की उत्पत्ति होती है। भावार्थ, यदि असत की उत्पत्ति मान ली जाए अर्थात जो वस्तु पहले किसी रूप में भी नहीं है ऐसी वस्तु की उत्पत्ति मानने से वस्तुओं की कोई मर्यादा नहीं रह सकती। हमने तो 6 ही द्रव्य देखे हैं तो वहां कोई मर्यादा ही नहीं रहेगी, कोई ना कोई द्रव्य उत्पन्न होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। यहाँ पर्यायों की बात नहीं हो रही, द्रव्यों की चल रही। जब बिना अपनी सत्ता के ही नवीन रूप से उत्पत्ति होने लगेगी, यानी कोई सत्ता है नहीं है और नए कुछ उत्पन्न हो जावे, तो संसार में अनंतो द्रव्य होते चले जाएंगे। इसलिए वस्तु को स्वतः सिद्ध मानना ही ठीक है, बिना मिट्टी के घड़ा स्वयं पैदा होने लगे। अब दूसरे पक्ष में आपत्ति, यानी स्वतः सिद्ध के बदले, पहले तो बताया ना उन्होंने असत की उत्पत्ति अगर मानेंगे तो क्या दोष होता है। अब कहेंगे दूसरे से परतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध के बदले स्वतः है ना अपने से, परत है ना पर से, यानी वस्तु पर से बनी है ऐसा मानेंगे तो क्या दोष होगा, वो यहाँ भी 11वें नंबर के श्लोक में बताएंगे। परतः सिद्धत्वे स्यात् अनवस्था लक्षणो महान दोषः, सोपि परः परतः स्यात् अन्यस्मादिति यतश्च सोपि परः। वस्तु को पर से सिद्ध मानने पर, यानी किसी ईश्वर से उत्पन्न हुई है ऐसा अगर मानेंगे, अन्य पदार्थ के कारण ये वस्तु हुई ऐसा मानेंगे, अनवस्था लक्षण महान दोष आता है। ये अनवस्था दोष क्या है उसको बताएंगे अभी। वो इस प्रकार आता है कि वस्तु जब पर से सिद्ध होगी, यानी जीव द्रव्य किसी अन्य के कारण उत्पन्न हुआ है, किसके कारण, ईश्वर से, तो वो ईश्वर किसके कारण उत्पन्न हुआ है, अन्य चीज से, वो अन्य चीज किससे उत्पन्न हुई, तो कहते हैं तो वह पर भी किसी दूसरे पर पदार्थ से सिद्ध होगा और वह पर भी दूसरे पर से सिद्ध होगा, क्योंकि परसिद्ध मानने वालों का यह सिद्धांत है कि हर एक पदार्थ पर से ही उत्पन्न होता है, यानी वहां कोई लिमिट ही नहीं रही, वो कहां तक चले जाएंगे, तो ओरिजिनल कोई तो पदार्थ होगा ना, तो उसके कारण बना, पर वो पदार्थ किससे बना और किसी से, वो पदार्थ किससे बना, नेवर एंडिंग, यानी ऐसा ही होगा, उत्पन्न हुआ ने नया हुआ, यानी वो अनादि से तो था नहीं, तो अनादि पहले एक ही द्रव्य था, वो किससे उत्पन्न था, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक द्रव्य की उत्पत्ति माननी पड़ेगी और हर द्रव्य की आदि 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 होती चली जाएंगी।
ईश्वर ने बनाया,
ईश्वर को किसने बनाया, देखो, क्योंकि पर सिद्ध मानने वालों का यह सिद्धांत है कि हर एक पदार्थ पर से ही उत्पन्न होता है, उससे वह, फिर उससे वह, इस प्रकार कितनी ही लंबी कल्पना क्यों न की जाए, क्योंकि ये तो रियलिटी है ही, कल्पना में हम इमेजिन कर सकते हैं ऐसा, वो उससे हुई, वो उससे हुई, वो उससे हुई, परंतु कहीं पर जाकर विश्राम नहीं आता, जहां रुकेंगे वहां पर यही प्रश्न खड़ा होगा, यह कहां से हुआ, इसलिए वस्तु को परसिद्ध न मानकर अनादि निधन मानना चाहिए, जो स्वतः सिद्ध वो है
स्वतः सिद्ध बेटर
वो दोनों, हाँ, भावार्थ नैयायिक ये एक मत का नाम है, आदि कतिपय, कतिपय ने कितने ही, मराठी में कितने, यानी कुछ कुछ अन्य धर्मों, हाँ, कतिपय ने कितना केटला दर्शन वाले, ये दर्शन है फिलोसॉफी जो है ना, जैसे जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, वैदिक दर्शन, इसको दर्शन कहते हैं, यानी अन्य मत वाले कहेंगे हम, वस्तु को पर से सिद्ध मानते हैं, ईश्वर आदि को उसका रचयिता बतलाते हैं, यानी ईश्वर ने इसको उत्पन्न किया, आदि में अन्य भी उनके जो कोई अपनी अपनी मान्यता है, कोई कोई तो प्रकृति को मानते हैं, कर्मों ने उत्पन्न किया ऐसा भी मानने वाले हैं, परंतु यह मानना सर्वदा मिथ्या है, क्योंकि ईश्वर को किसने बनाया, यदि ईश्वर स्वतः सिद्ध है तो सभी स्वतः सिद्ध है, कोई कहेंगे नहीं ईश्वर तो स्वतः सिद्ध है, तो जब ईश्वर स्वतः सिद्ध हो सकता है तो अन्य पदार्थों को क्यों नहीं स्वतः सिद्ध माना, ये कहना चाहते। अब तीसरे पक्ष में आपत्ति, तीसरा पक्ष क्या था, तो कहते वो युद्ध सिद्ध मानने वालों का था, यानी किसी संयोग से अन्य चीज की उत्पत्ति हुई ऐसा मानने वाले, उसके लिए हम श्लोक पढ़ेंगे, युद्ध सिद्धत्वे प्येवम् गुण गुणिनो स्यात् पृथक् प्रदेशत्वम् उभयोरात्म समत्वात्
लक्षण भेद कथम तयोर्भवति।
युत सिद्ध मानने पर अर्थात पदार्थों के संयोग से पदार्थ मानने पर, यानी दो पदार्थों के संयोग से और तीसरा हुआ ऐसा अगर मानेंगे तो, जैसे लकड़ी और पुरुष के संयोग से दंडी, दंडी समझते हैं, लाठी वाला, लाठी वाला तो हम कहेंगे वो तो लाठी भिन्न है और वो पुरुष भिन्न है, और दोनों को मिलकर हमने कह दिया ये लाठी वाला। अभी कभी कहेंगे चश्मे वाला, टोपी वाला, जो कुछ दो पदार्थों से तीसरा बन गया। गुण और गुणी, गुण तो समझते हैं, गुणी किसको, जिसमें गुण पाए जाते हैं उसको गुणी कहेंगे, यानी द्रव्य दोनों ही के भिन्न भिन्न प्रदेश ठहरेंगे। देखो हमने जैसे देखा था कि वो लाठी भिन्न है, लकड़ी भिन्न है और पुरुष भिन्न है, दोनों के प्रदेश भिन्न है, और उसने वो लकड़ी के पकड़ा वो तो लाठी वाला हो गया, दोनों के प्रदेश भिन्न है। ऐसे गुण भिन्न है, गुण यानी द्रव्य भिन्न है और उनके संयोग से वस्तु बन गई, तो द्रव्य में क्या था, जब गुण और द्रव्य का संयोग हुआ है तो द्रव्य में क्या था, द्रव्य किसको कहेंगे फिर, द्रव्य की परिभाषा क्या हो जाएगी, अरे पर गुणों को तो अलग निकाला ना, तो फिर यहाँ द्रव्य किसके, क्या मैंने इनकी मान्यता में कैसे दोष आते हैं, दोनों ही के भिन्न भिन्न प्रदेश ठहरेंगे, उस अवस्था में दोनों ही समान ठहरेंगे, एक बार सभी गुणों को रखा उसको द्रव्य कहेंगे, यहाँ द्रव्य रखा तो उसके सभी गुण आ गए, तो समान ही हो गए ना दोनों। फिर अमुक गुण है और अमुक गुणी है, ऐसा गुण गुणी का भिन्न भिन्न लक्षण उन दोनों में नहीं बन सके। भावार्थ, अनंत गुणों का अखंड पिंड स्वरूप यदि वस्तु मानी जाए तब तो गुण गुणी के भिन्न प्रदेश नहीं होते, दोनों का प्रदेश एक ही, एक ही क्षेत्र है ना, द्रव्य ही उसको नाम दिया जाता है जहाँ अनंत गुणों का समूह है, ऐसा नहीं कि ये द्रव्य अलग है उसके अंदर गुण भरे, ऐसा भी नहीं है, वो तो गुणमय है और अभिन्नता में ही विवक्षावश, यानी किसी हम किसी अपेक्षा के कारण जो बदाना है, गुण गुणी में लक्षण भेद हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं, यहाँ प्रदेश भिन्नता नहीं है, किस में भिन्नता है भाई, नितिन भाई के मिली भाई बताएं, गुण तो समझते हैं ना, जिसे ज्ञान दर्शन वगैरह गुण है, पुद्गल में स्पर्श रस आदि गुण है और गुणी द्रव्य को कहेंगे, तो दोनों में लक्षण भेद है, इसका अर्थ क्या है, भावे भेद, यानी उनका द्रव्य का लक्षण अलग है, गुण का लक्षण अलग है, द्रव्य का लक्षण क्या कहते हैं, गुणों के पर्याय के समूह को हम द्रव्य कहेंगे, नाम, हाँ, नाम दोनों के भिन्न भिन्न है, उनकी संख्या अलग है, प्रयोजन अलग है, यहाँ तो लक्षण की बात चल रही है, दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है पर प्रदेश भिन्नता नहीं, क्योंकि हमने देखे ना जैसे जीव द्रव्य है तो ज्ञान गुण का भी द्रव्य कौन सा है, जीव द्रव्य, द्रव्य वही है, जीव का क्षेत्र कितना है भाई, असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात लोक नहीं, असंख्यात प्रदेशी, कितने असंख्यात तो लोक में जितने उतरे, तो ज्ञान गुण का क्षेत्र कितना है, जितना बड़ा द्रव्य उतना बड़ा उसका एक एक गुण, प्रत्येक गुण उतना बड़ा, तो गुणों का क्षेत्र कहो, उसका विस्तार कहो, उसके प्रदेश कहो, और द्रव्य के एक ही है, भिन्न नहीं है, उतने ही, ऐसा भी नहीं कहेंगे, वे ही है, जो प्रदेश या क्षेत्र द्रव्य का है वही क्षेत्र गुणों का है, तो कहते प्रदेश भिन्न नहीं है और विवक्षावश गुण गुणी में लक्षण भेद हो जाता है, यानी उसके लक्षण हम अगर भिन्न कहना चाहते तो वो लक्षण का भेद है वहां पर, यानी द्रव्य वही है, दोनों का क्षेत्र वही है, काल अनादिनंत वही है और भाव से भिन्नता है, भाव यानी दोनों के लक्षण में पृथकता है, परंतु जब वस्तु के भिन्न प्रदेश माने जावे और गुणों के भिन्न प्रदेश माने जावे, जैसे हमने देखा ये पुरुष भिन्न है अलग यहाँ बैठा है और उसकी लकड़ी वहां कोने में रखी है, दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है, ऐसा अगर हम द्रव्य को और गुण को मानेंगे तब दोनों ही स्वतंत्र हो गए, दो भिन्न पदार्थ स्वतंत्र हो जाएंगे। और स्वतंत्रता से अमुक गुण है और अमुक गुणी है ऐसा लक्षण भेद नहीं कर सकते, तो फिर गुण किसको कहना और गुणी किसको? एक बाजू पूरे द्रव्य का अखंड समूह है और एक बाजू पूरा द्रव्य उसमें भी गुण है, तो गुणी किसको कहना गुण किसको कहना? समान अधिकार में दोनों ही वस्तु हो गए अथवा दोनों ही गुण हो गए, ख्याल में आती ना बात, क्योंकि दोनों ही जगह गुणों के समूह है और इसको गुणों का समूह इसको द्रव्य कहेंगे और उसको द्रव्य है तो गुणों का समूह कहेंगे, एक ही बात है दोनों जगह। इसलिए युत सिद्ध मानना ठीक नहीं है, किंतु निर्विकल्प यानी अखंड वस्तु मानना ठीक है। निर्विकल्प का अर्थ होता है अखंड वस्तु, उसके प्रदेश जुदा जुदा होते हैं, वह कभी एक वस्तु नहीं होती। जिसके प्रदेश जुदे जुदे होते, प्रदेश जुदे होने ने वो पृथक भिन्नता जो कहते, यानी इसके और इसके प्रदेश भिन्न भिन्न है ना, जो अलग अलग वस्तुएं हैं, तो जहां प्रदेश की पृथकता है वहां वो एक वस्तु नहीं होती। निमित्त से उपादान में कार्य मानने वाले युक्त सिद्ध ही मानते। देखो कितना बड़ा गजब का सिद्धांत इस पर से बता दिया, निमित्त जाके उपादान में कार्य करे ऐसे अगर हम मानेंगे दो भिन्न पदार्थ तो कहते कि युक्त सिद्ध मानना पड़ेगा, दोनों मिलकर एक हो गए और उन्होंने वो कार्य किया ऐसा मानना पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे चौथे पक्ष में आपत्ति। ये अन्य मतियों का पूरा निराकरण हो रहा है, जो मिथ्या मान्यताओं का खंडन हो रहा है। 13 नंबर का श्लोक, अथवा सतो विनाश स्यादिति पक्षोपि बाधितो भवति नित्यं यतः कथञ्चित् द्रव्यं शून्यैः प्रतीयते ध्यक्षाः। अथवा सत का नाश होता है यह पक्ष भी बाधित है। पहले तो असत का उत्पाद होता है, इस पक्ष को हमने बाधित कर दिया। अब किंजो जो है सत है वो नष्ट हो जाएगा, तो कहते ये पक्ष भी बाधित है, ये बात भी सिद्ध नहीं हो सकती, ये बात भी झूठी है, क्योंकि ज्ञानियों के द्वारा स्व संवेदन प्रत्यक्ष से द्रव्य कथंचित नित्य अनुभव किया जाता है। यानी अगर सत का नाश मानेंगे तो आत्मा का भी नाश हो जाएगा, परंतु ज्ञानियों ने स्व संवेदन यानी अपना संवेदन आत्मा की अनुभूति कर लिए है और वो प्रत्यक्ष से, तो द्रव्य नित्य है ऐसा अनुभव किया है उन्होंने, तो वो भी नहीं ठहरेगा, यानी वो प्रत्यक्ष से बाधित हो जाती है ना बात। स्व संवेदन प्रत्यक्ष का विषय और उससे वस्तु है ये बात सिद्ध हो गई है, अब उसका नाश मानना पड़ेगा। भावार्थ में बताते हैं, यदि सत का नाश मानते हो तो आत्मा का ही नाश हो जाएगा, फिर किसका मोक्ष और काहे की मोक्ष मार्ग की कथा? तो फिर अगर नाशी होना है तो ये मोक्ष और उसके लिए प्रयत्नशील क्यों करें? नाशी होना है ना उसका, तो द्रव्य का ही नाश होगा ना, उसकी परे रहेगी। उपसंहार कर तो तभी समेटना है, इसे तात्पर्य बता देंगे आप। जहां जो ये तत्व शब्द है ना, वो तत्व डबल तो होना चाहिए, सेकंड लाइन में जो लिखा है तत्वम, जैसे हमने जब नाम याद किए थे ना वहां जैसे तत्व लिखा है ना, वही उस तरह से डबल तो होना चाहिए तत्व। अभी हम पढ़ेंगे इसको, तस्मादनेक दूषण दूषित पक्षान निच्छता पुंसा अनवद्य मुक्त लक्षण मिह तत्वं चानुमन्तव्यम्। इसलिए उपसंहार ने तात्पर्य करना है, उसको समेटना, अभी ये विषय समेट कर अभी दूसरा शुरू होगा। देखो ये मराठी नॉवेल्स में पहले के जमाने में समरी भी कह सकते हैं, उपसमाराते पहले उपोद्धात आता था, शुरुआत में उपोद्धात यानी क्या आने वाला है उसका अंदाजा, और सब अंत में उपसंहार किया जाता है, जो आ चुकी है बात उसको तात्पर्य के रूप में बता देते हैं। इसलिए यानी सर्वाड़ो जिसको हम कहेंगे, इसका पूरे का सर्वाड़ा क्या है, अनेक दूषणों से दूषित पक्षों को, पक्ष ने ये अन्य अन्य मान्यता है बोली का ना, अनेक दूषण दूषित पक्षों को जो पुरुष नहीं चाहता, यानी जो व्यक्ति जो जीव इन मिथ्या मान्यताओं को नहीं रखना चाहता, उसे योग्य है कि वह ऊपर कहे हुए लक्षण वाली निर्दोष वस्तु को स्वीकार करे। अभी हमने जो बताया ना यहाँ पर तत्त्वम सल्लाक्षणिका, ये जो मान्यता है वो सही है, क्योंकि देखो निर्दोष ऊपर कहे हुए लक्षण वाली निर्दोष वस्तु को स्वीकार करे, ये लक्षण कैसा है तो निर्दोष लक्षण, अर्थात वस्तु को सत स्वरूप स्वतः सिद्ध अनादि निधन स्वसहाय और निर्विकल्प ही समझे। कितनी बातें बताई, बताओ बोलो बोलो।
शब्द एक लगा ऐसे तो दो आते हैं,
कौन सा
अनादि और अनिधन,
अनादि निधन एक शब्द,
निधन एक शब्द
बोलो,
सिद्ध अनादि निधन स्वसहाय
निर्विकल्प, तो वस्तु का ऐसा मानना ही ये सही लक्षण है, निर्दोष लक्षण है, क्योंकि अन्यथा मानने में क्या क्या दोष आ सकते हैं ये हमने देखे। ये जो दोष हमने देखे यहाँ पर, पहला पक्ष में क्या आपत्ति, दूसरा पक्ष में ये कैसा दोष होगा उसको क्या कहेंगे हम, तीन प्रकार के दोष आपने देखे। हाँ असंभव दोष, यानी ऐसी वस्तु हो ही नहीं सकती। अन्य भी दोषों के नाम मालूम है आपको सुशांत? नहीं मालूम। आपको मालूम? कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीन प्रकार के दोषों से रहित लक्षण बांधना चाहिए। लक्षण किसको कहते हैं? लक्षण का लक्षण बांधना। लक्षण की परिभाषा क्या है? हाँ बोलो।
मेरी जो वस्तु ऐसे किसी एक वस्तु को जिसके द्वारा अन्य,
बहुत अच्छा, हाँ
अनेक जाता है उसको लक्षण,
अनेक मिली जुली वस्तुएं हैं और उसमें किसी एक वस्तु को हमको पहचानना है, जिसको अलग निकालना है, अलग किया जा सकता है, उसको हम कहेंगे उस वस्तु का वो लक्षण, उसके द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये लक्षण ऐसा बांधना चाहिए कि जिसमें ये तीन दोष नहीं होने चाहिए, कौन सा? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये अव्याप्ति क्या है, जैसे हमको जीव का लक्षण बांधना है तो जीव का लक्षण हमने कह दिया कि मति ज्ञान वाले वो सब जीव है, तो क्या होगा भाई? क्यों?
उसमें पांचों ज्ञान है।
किसमें? जीव में।
जीव में सभी ज्ञान स्वरूप।
कौन से जीव में पांच ज्ञान है?
जीव ज्ञान स्वरूप।
हमने वो कहाँ पूछा? हमने पूछा मति ज्ञान वाला शशांक, वो आप ही उत्तर देंगे। यदि हम जीव का लक्षण, सभी जीव ने, जीव ने सभी संसारी मुक्त सभी आ गए, उसका लक्षण अगर हम मति ज्ञान वाला वो जीव ऐसे अगर हम डेफिनेशन करेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? ये लक्षण ऐसा होता है जो सभी में पाया जाना चाहिए और अन्य पुद्गल आदि में नहीं होना चाहिए। अभी रुको, आप सोच सकते हैं कोई ऐसी जीव है कि जिसमें मति ज्ञान नहीं है? कौन? सभी मति, केवल ज्ञानी में ये नहीं है लक्षण, अरिहंतों में भी नहीं है, सिद्धों में भी नहीं है। यानी अरिहंत और सिद्धों को जीव है कि नहीं? वे जीव है। तो अगर हम मति ज्ञान ये जीव का लक्षण कहेंगे तो वो उनमें घटित नहीं होता, यानी पार्ट ऑफ जीवों में घटित होता है, बाकी अन्य में नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे अव्याप्ति, पूरे को कवर नहीं किया उस लक्षण ने, सभी जीवों को कवर नहीं किया। अगर हम केवल ज्ञान जीव का लक्षण कहेंगे तो केवल अरिहंत और सिद्धों में वो केवल ज्ञान है, हमारे आप में तो नहीं है, तो क्या हम जीव नहीं है? हम है। तो लक्षण क्या बांधा? उपयोग लक्षण। ये ज्ञान जो लक्षण है सभी में है, हमने किसी केवल ज्ञान या मति ज्ञान का नाम नहीं लिया, हमने ज्ञान लिख दिया, कह दिया उसको उपयोग कह दिया, वो तो सभी जीवों में है। तो लक्षण ऐसा होना चाहिए कि जो सभी में पाया जाए, जीव का लक्षण मानना है तो सभी जीवों में होना चाहिए, और लक्षण ऐसा होना चाहिए कि जो अन्यत्र नहीं होना चाहिए। जैसे हम अमूर्ति के जीव का लक्षण है ऐसा कहेंगे तो क्या दोष आएगा अमूल, आप बताएंगे? अमूर्तिकपना है अरूपीपना को, कल हमने देखा था एक पुद्गल मूर्तिक है और बाकी पांच द्रव्य अमूर्तिक है, तो अमूर्तिकपना जीव का लक्षण है, जो जो अमूर्तिक है वो जीव है ऐसा हम कहेंगे तो क्या आपत्ति होगी? ये लक्षण अन्य भी किसी में पाया जाता है ना, आकाश में भी है, काल में भी है, क्योंकि हमने कहेंगे ये अमूर्तिक को जीव, तो आकाश द्रव्य आकर कहा वो हम भी अमूर्तिक है, हमको भी जीव कहो, काल द्रव्य कहा हमको हम भी अमूर्तिक है, धर्म द्रव्य कहेंगे हम भी अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य कहें हम भी अमूर्तिक है, तो सबको जीव मानना क्या नहीं मानना? तो कहते वो लक्षण नहीं है। लक्षण ऐसा होना चाहिए जो जिसका लक्षण बांध रहे वो लक्ष्य में पूरे भाग में होना चाहिए, और लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में नहीं पाया जाना चाहिए। वही इसीलिए वो पूछा था ना, कल संडे को पूछा था, तो
सेकंड
क्लास में
आएगा,
कल ही बात आई थी ना, एक कौवे का लक्षण काला, ऐसा अगर हम बांधेंगे लक्षण, जो जो काला है वो कौवा है, क्या होगी आपत्ति? जो काली सभी चीजें कौवा हो जाएगी। क्या ना, ये लक्षण कैसे होना चाहिए? तो इसको कहेंगे अतिव्याप्ति, यानी जिसका लक्षण बांधने वाले उसमें तो ये लक्षण है, ये अन्य में भी पाया जाता है। सिंह वाले सभी गाय है ऐसा हम कहेंगे तो क्या सही लक्षण है? क्योंकि सिंह वाले अन्य भी पशु है ना, उनको भी गाय मानना पड़ेगा, फिर ख्याल में आई बात? तो ये लक्षण उसमें ना अतिव्याप्ति चाहिए, ना अव्याप्ति चाहिए, ना असंभव। असंभव क्या है? वो काला गोरा जीव का लक्षण है कहेंगे तो वो असंभव दोष, ये हो ही नहीं सकता। तो ये जो हमने वो प्रतिप ये अभी जो असत मानेंगे या परत सिद्ध मानेंगे, युक्त सिद्ध मानेंगे, कैसे वो सारे असंभव दोष वाले हैं, वो सच्चा लक्षण नहीं हो सकता, यानी हो ही नहीं सकता, लक्षण की तो बात ही नहीं है। इसलिए यहाँ बताते हैं कि ऊपर कहे हुए लक्षण वाली निर्दोष वस्तु को स्वीकार करे, यानी वस्तु को सत्स्वरूप, स्वतः सिद्ध, अनादि निधन, स्वसहाय और निर्विकल्प ही समझे। अभी श्लोक 8 से 14 तक का सार। जैन धर्म ने इस विश्व की प्रत्येक वस्तु को, ये प्रत्येक वस्तु में वो जाति अपेक्षा छ और संख्या अपेक्षा अनंत तो सभी द्रव्य आ गए, प्रत्येक वस्तु को सत्स्वरूप, स्वतः सिद्ध, अनादि अनंत माना है। अमोल, ये आप पर अप्लाई होता है कि नहीं होता है? तो आप स्वयं कैसे हो? हमें ऐसा उपचार करना है, मैं सत्स्वरूप हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ और अनादि अनंत हूँ। क्या हमने ऐसा माना कि अपने को इतने साल वाला माना, 25-30 वाले हमने माना, 60-65 साल वाले, अभी कितनी रह गई उम्र, अभी हम तो नष्ट हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खलास हो जाएगा। प्रत्येक पदार्थ परसे निरपेक्ष, स्वसहाय, अखंडित, यानी इसमें कोई खंड खंड नहीं है, समझाने के लिए भेद करके भले समझावे परंतु वस्तु तो हमेशा अखंड ही होती है, उसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते। अनादि अनंत, अपने त्रिकाली स्वरूप में स्थिर रहता हुआ, पर्याय द्वारा परिणमन किया करता है। देखो ये पूरा वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर पढ़ेंगे इसको। जैन धर्म ने जैन धर्म ने माना ऐसा नहीं, ये तो ऐसी ही वस्तु का स्वरूप जो जैन धर्म में ये बताने वाले केवल ज्ञानियों ने, सर्वज्ञ वितरागी ने ये स्वरूप बताया है, ऐसा ही है। वो ऐसा मानते हम ऐसा मानते और हम इसलिए सच्चे वो बुरे क्योंकि वो हमारे विरुद्ध, ऐसी बात नहीं है। तो कहते इस विश्व की प्रत्येक वस्तु को सत्स्वरूप स्वतः सिद्ध अनादि अनंत माना है। प्रत्येक पदार्थ परसे निरपेक्ष, क्योंकि वो बिल्कुल स्वसहाय है ना, इसको टिकने के लिए परिणमन करने के लिए किसी पर की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है, स्वसहाय अखंडित अनादि अनंत अपने त्रिकाली स्वरूप में स्थिर रहता हुआ पर्याय द्वारा परिणमन किया करता है। ये अपने त्रिकाली स्वरूप में स्थिर रहकर कौन परिणमन करता है, कौन सी वस्तु, पुद्गल के जीव, जीव प्रत्येक पुद्गल भी उसके स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, कायम रहते हैं और उसकी पर्याय पलटती रहती, उसमें परिणमन चलता रहता है, है ना, कभी हरा कभी पीला जो कुछ होता है, वर्ण गुण तो कायम है। यहाँ क्या लिखा, त्रिकाली स्वरूप में स्थिर रहता हुआ स्पर्श रस गंध वर्ण वाले गुण कायम रहते हुए उसके पर्याय में जो कुछ पलटना हो जाता है पर्याय द्वारा परिणमन किया करता है। इसके विपरीत ये कल पढ़ेंगे, ये सार फिर कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। जवानी के ज्ञान से सूझे लो।